Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Bhakti Shakti Samhita Vasalvi Mata Ashtami Behno Aap Sarva Bandhu Taittiriya Upanishad ke इस ओंकार उपासना संबंधी प्रकरण को लेकर के चर्चा की जा रही है। ऋषि ने सबसे पहले प्रार्थना संगता उपासना की चर्चा की, उसके पश्चात मेधा की कामना करता है, तत्पश्चात जो है श्रेय की कामना करता है। मेधा की कामना किस लिए की उसने, तो यहां संकेत किया गया मेधा की कामना जपार्थ, जप के लिए मेधा की कामना की। अब कहोगे जप में मेधा की क्या जरूरत, जप तो वैसे भी हो सकता, लेकिन यहां जो है श्रुति संकेत करती है कि जप के लिए मेधा की कामना और होमार्थ जो है श्री की कामना और अंत में जो है फिर उस ओंकार की व्याहृतियों को लेकर के जो उनकी सर्वरूपता की चर्चा की गई है और ऐसे उस ओंकार की उपासना फिर बतलाई। वह किस लिए, तो कहा स्वराज्य की प्राप्ति के लिए। इस प्रकार से यहां पर संकेत कर रहे हैं। तो अब यहां पर थोड़ा सा इस बात को देखें कि यहां पर जो है मेधा की कामना जो सभाषिकार भी संकेत करते हैं कि ये जपार्थ है, जप के लिए। क्या मतलब, तो देखो शास्त्र के अंतर्गत चर्चा आती है, जैसे हमारे जीवन में शुभ अशुभ कर्म है और फिर संकेत किया स्वाभाविक कर्म है। शुभ अशुभ कर्मों का कर्ता को फल मिलता है। अब उस फल में जो है जैसा उसका कर्म है उसके अनुसार फल मिलता है, लेकिन वहीं पर संकेत किया जो स्वाभाविक कर्म है उनका फल क्या है, तो उसके लिए संकेत कर दिया गया कि परमात्मा की प्रसन्नता। ये सब संकेत करते हुए सामान्य रूप में जैसे हम देखते हैं कि जो भी हम कर्म करते हैं उन कर्मों में कर्तृत्व तो अवश्य रहेगा। सामान्य धारणा जो है वो यह है कि जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्म में कर्तापना और कामना के बगैर वो कर्म होगा कैसे। फिर स्वाभाविक कर्म कहना या निष्काम कर्म कहना और उसका फल जो है भगवान की प्रसन्नता बतलाना, प्रसन्नता का फल ज्ञान आदि बतलाना, ज्ञान का फल मोक्ष बतलाना, ये सब जो परंपरा बतलाई है ये इसका तात्पर्य क्या है। क्योंकि जहां पर भी हम मोक्ष को ही चाहते हैं तो मोक्ष की कामना तो हुई, और तद अनुकूल जो भी श्रवण मनन ध्यासन आदि करते हैं वो भी एक कर्म तो हुए। लेकिन फिर यहां पर यह वेद कैसा कि जो शुभ और अशुभ कर्म है वो कर्म जो है वो भी कर्ता के द्वारा होंगे और जो स्वाभाविक आदि कर्म कहे गए वो भी कर्ता के द्वारा होंगे। लेकिन फिर वेद कैसा कहा, जो कर्तृत्व को लेकर के होने वाले कर्म हैं उन कर्मों का फल कर्ता को शुभ शुभ रूप से प्राप्त होता, लेकिन स्वाभाविक जो कर्म हैं उनका फल क्या है, तो वहां कह दिया परमात्मा की प्रसन्नता रूप यह फल बतलाया। लेकिन अंतर क्या है, तब उस अंतर को बतलाते हुए संकेत किया। एक सामान्य व्यक्ति है और उस व्यक्ति के अंतर्गत हम देखें तो दो चीजें प्राप्त होती, एक तो हकार प्राप्त होता है और एक नकार प्राप्त होता। कहीं पर भी जब कर्म में प्रवृत्ति उसकी होने जाती है तो उस प्रवृत्ति से पहले ये हकार नकार दोनों उपस्थित होते हैं। हकार का मतलब है और नकार का मतलब न, तो ऐसा है मतलब स्वीकृति और नकार का मतलब अस्वीकृति, ये सीधा। अब जैसे एक चोर जो है, और वो भी जब चोरी करने चलता है, और जब चोरी करने चलता है और चोरी करने के लिए प्रवृत्ति होती है, तो उसके अंतःकरण में भी ये हकार और नकार आते हैं। वो देखता है कि ये चोरी करना जो है हम कर रहे हैं, क्या ये उचित है या अनुचित है। तो वो जानता है इस चीज को, वो भी जानता है कि चोरी करना उचित नहीं है, ये जानता है, और न करना ही उचित है। लेकिन कारण क्या है वहां, फिर वो चोरी में उसकी प्रवृत्ति क्यों होती? तब वहां संकेत कर दिया गया कि वहां पर उस चोर के अंतर्गत उस वस्तु विषयक लोभ बैठा हुआ है। वह लोभ जो है उसके हकार को भी तिरस्कृत कर देता है। लोभ के कारण जो है वह, यह दोनों विकल्प उसके सामने उपस्थित होते हैं, लेकिन उचित पने के विकल्प को वो तिरस्कृत कर देता है। और क्या करता है? तो कहने लगे जो नकार से युक्त है उसी को हकार में परिवर्तित कर दे। ऐसे ही सर्वत्र, ये तो एक उदाहरण हो गया, हम जो भी कर्म करते हैं संसार के अंतर्गत और जहां पर भी करते हैं, तो प्राणी मात्र के हृदय में ये दो चीजें आती हैं। लेकिन जहां पर हम इन लोभ मोह आदि के द्वारा या राग आदि के द्वारा जहां पर भी हमारा अंतःकरण युक्त होता है, तो वहां पर जो है हम हकार को तिरस्कृत करके और नकार में हमारी प्रवृत्ति हो जाती। अब जो नकार में प्रवृत्ति होना है ये तो दुष्ट कर्म अशुभ कर्म के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन हकार में प्रवृत्ति होना तो वो कहने लगे वो जो है शुभ कर्म के अंतर्गत आ जाए। लेकिन यहां पर भी और भी संकेत किया कि जहां पर हम लोग जो है शरीर इंद्रिय प्राण इनका जो संघात, और उस संघात को संचालित करने वाला जो भी कहें, आत्मा कहें, ईश्वर कहें, या जो भी कहना चाहें कहें, तो ये जो संघात है इंद्रिय शरीर और प्राण, इस संघात को संचालित करने वाला, अब यही समस्या है कि संचालित करने वाला कौन? हम कह तो देते हैं कि ईश्वर, ये सभी कहते हैं, चोर भी कहता है अचोर भी कहता, क्या कहता है, कहा इसको संचालित करने वाला कौन है? ईश्वर। लेकिन अब यहीं पर देखना है कि हम जब ये कहते हैं कि संचालित करने वाला ईश्वर है, तो हमारी आस्था किसमें होनी चाहिए? का ईश्वर में होनी चाहिए। आस्था का विषय कौन हो गया? का ईश्वर हो गया। और बड़ी विलक्षण बात है, हम लोग अपनी आस्था को दिखलाते भी और कहते भी हमारी आस्था ईश्वर में है, ये कहते सभी कहते। अब यदि आस्था ईश्वर में है तो फिर कर्ता कौन हुआ? वही संचालित करने वाला है, इस सारे संघात को करने वाला है, और हमारी भी आस्था कहने लगे ईश्वर में है। तो ईश्वर में यदि आस्था है तो आस्था का मतलब क्या? हम लोग सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं आस्था, आस्था का मतलब क्या? श्रद्धा विश्वास कहते, या दूसरे रूप से कहें व्युत्पत्ति के अनुसार तो आंग उपसर्ग है, स्था धातु है, और उसको लेकर के ही शब्द बनता है आस्था। आसमंतात स्थित इति आस्था, लेकिन स्थिति किसकी होगी? तो आसमंतात वृत्तेर स्थिति इति आस्था, सम्यक रूप से पूर्ण रूप से वली प्रकार से जिसमें संशय विपर्य आदि नहीं है, ऐसे जो है निश्चय पूर्वक जो हमारी स्थिति जिसमें है उसका नाम है आस्था। अब यहीं पर विचार करो, जब हम अपनी आस्था को कहते हैं कि हमारी ईश्वर में आस्था है, लेकिन जब ईश्वर में आस्था है तो ईश्वर से हटकर के ये कर्ता कौन आ जाता, ये कर्ता कहां से आया? आस्था ईश्वर में है तो कर्ता कौन है? का ईश्वर है। लेकिन क्या हम ईश्वर को कर्ता मानते हैं? वहां पर जो है कर्ता कौन हो जाता? कहा ये एक दूसरा ही हो जाता। अब ये जो कर्ता है वो कर्ता कैसा है विचार करो। कर्ता जब ईश्वर को आप स्वीकार करते हो तो ये जो कर्ता है वो कर्ता कैसा है, उस कर्ता का प्रारूप क्या है? ईश्वर को तो कहते हो कर्ता कैसा है, तो कहने लगे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था, वो करने में न करने में अन्यथा करने में सब तरह से समर्थ है, और वो जो कैसा है तो कहा व्यापक भी है, ये सब उसके सर्वज्ञ भी है, ये सब उसके लिए कह देते हो। लेकिन ये बीच में जो कर्ता आया वो कर्ता कैसा है? तो इतना तो कह देते हो वो कर्ता जो है वास्तव में बीच में बन गया है, लेकिन कर्ता न होते हुए भी उसने अपने में कर्तापने का आरोप कर लिया। अब जो कर्तापने का आरोप हुआ है उसमें कारण क्या है? क्योंकि कारण के बगैर कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। तो अब जो कर्ता जो बीच में आया है वह जो कर्ता है तो वो कर्ता कैसा है? तो क्या कहोगे? तो आरोपित। और कोई भी आरोपण जो होता है वो किस लिए होता? जो भी आरोपण करते हो, आरोपण दो प्रकार से होते, एक तो अज्ञान में आरोपण हो जाता है जिसे हम भ्रम अध्यास आदि शब्दों से कहते, और एक जान करके भी आरोपण होता है। लेकिन जो भी आरोपण हो, आरोप कृत जो वस्तु है वो सत्य, उसकी सत्ता अपनी निजी नहीं, और जितना भी आरोप होता है वो आरोप किस लिए होता? अपवाद करने के लिए, वाद करने के लिए। पहले उसका आरोपण करते हैं और फिर उसका वाद करते हैं, जितने भी आरोपण। और यदि कोई वाद नहीं करता है, उस आरोप को नहीं हटाता है, तो उसका परिणाम क्या होता? जब तक वो आरोप रहेगा तब वो आरोप अपने गुण धर्मों से क्या करेगा? उसे लिपायमान करेगा। जैसे उदाहरण के लिए आपने शरीर में पाउडर लगाया तो ये क्या हुआ? एक आरोप किया। पाउडर या और भी कुछ समझ लो, जो भी लेप आदि करते हो, चंदन सुबह लगाते हो, चलो पाउडर छोड़ो, चंदन मस्तिष्क में लगाया, भगवान को भी लगाते हो अपने भी लगाते हो, ये आरोपण किया। और वो आरोप किया तो एक काल तक तो उससे बड़े प्रसन्न होते हो, और जो है उससे जो है प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सुख महसूस करते हो, लेकिन वो चंदन कब तक रखते हो? फिर उस चंदन को क्या करते हो? धो डालते। क्यों धो क्यों दिया? सुख देने वाला था। कहने लगे उसके सुख में भी दुख मिश्रित है, जितने भी आरोपण हैं चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, उन सारे के सारे आरोपों के अंतर्गत क्या स्थिति है? कहा वह दुख से मिश्रित सुख है। यदि सुख भी जिस काल में हो रहा है तो वो दुख से मिश्रित है। क्यों? क्योंकि यदि उस चंदन को ही लगाए रहोगे तो धीरे धीरे वही क्या है, पसीना जब उसमें आएगा, पसीना उसमें मिश्रित हो जाएगा, तो वही चंदन आपके लिए कैसा हो जाएगा? दुखद हो जाएगा। जो सुख दे रहा था अब वो सुख देने वाला है। तो इस प्रकार से फिर क्या करते हो? जल से उसका जो है निवर्तन कर देते हो। तो ये तो है उदाहरण। इसी प्रकार से चाहे ये संसार अध्यस्त हो, चाहे ये जीव अध्यस्त हो, चाहे आपका अहंकार अध्यस्त हो, या जो कुछ भी अध्यस्त है या आरोपित है, वो सारा आरोपित कैसा है, उसमें सुख की प्रतीति होती है, लेकिन वो सुख भी कैसा है, तो दुख से मिश्रित है। और इतना ही नहीं, शरीर भी आरोपित ही है, लेकिन आरोप में भी आरोप है। इसलिए जो बोलते हो ना, शास्त्र के अंतर्गत स्वरूपाध्यास, संसर्गाध्यास, फिर अन्योन्याध्यास, ये ध्यास की परंपरा पे चलती जाती। तो अब जहां पर शरीर इंद्री प्राण संघात है और उसका संचालित करता कहा परमात्मा है, है ना? अब जो है उसी शरीर को लेकर के फिर क्या होता, उसके संबंधी बनाए जाते हैं। और संबंधी बनाना क्या है, ये संबंध का आरोपण करने वाला कौन है, जिससे आपका कोई परिचय नहीं था, कोई संबंध नहीं था, और फिर आपने संबंध बना लिया तो क्या हो गया, तो कहा प्राणों से प्यारा है। और ये सब अब जब इस प्रकार का जब संबंध बन जाता है, तो उसके दुख में दुखी होना, उसके सुख में सुखी होना, ये सारी बातें आ जाती। वो सुख तुम्हारे में न हो, वो दुख तुम्हारे में न हो, वो दुख उसमें है, लेकिन उससे एक संबंध स्थापित, अन्योन्याध्यास कह देते इसको, जो उसके एक संबंध होने के कारण उसके सुख से सुखी होना, उसके दुख से दुखी होना, ये हो जाता। तो ये सब क्यों हुआ, आरोप को लेकर। अब ये सब आरोपादी उन्हीं में फिर संकेत कर दिया, वो क्या हुआ, तो जहां पर भी ये अन्योन्याध्यास होता है या आरोप में आरोप होता है, वहां पर क्या होता, कहा वो आरोप बगैर ममता के हो सकता कि होगा, उस आरोप के अंतर्गत ममत्व आ ही जाता है। और जहां भी ममता आदि आती है, वहां पर आसक्ति आदि सारे के सारे जो है धर्म आ जाते हैं, और उसको लेकर के नाना प्रकार के सुख और दुख भी होने लगे, संकेत किया। तो अब वहां पर जो इस प्रकार से हम जब चलते हैं, तो ममता कामना लोभ मोह आदि जो कुछ भी कहें, इनसे वह ग्रसित हो ही जाता। और जब वो करता, जो आरोपित करता है, ये क्या है, स्वरूपाध्यास, संसर्गाध्यास, अन्योन्याध्यास, तो ये तो जो क्या है, सीधा सीधा जो आरोप हुआ इंद्रिय प्राण और शरीर आदि के संघात का, और फिर उस संघात में भी आरोप, ये समझ। अब ये जो संघात है, इसी संघात के अंतर्गत जो एक कर्तापने का आरोप हो गया, और फिर उस कर्तापने में संबंधों का आरोप हो गया, और वो जो सारे आरोप हैं वो किए किस लिए गए थे, किस लिए किए गए थे, तो आप क्या कहोगे, भाई आरोप होता है किस लिए, अपवाद के लिए। कोई भी आरोप संसार का ले लो, जितने भी आरोप हैं, वो सब आरोपों का प्रयोजन है अपवादित करना। लेकिन ये आरोप और फिर अपवाद करना, कीचड़ में हाथ डालना और फिर धोना, ये झंझट क्यों लोग बोल लिया जाए, हैं? फिसाद इसलिए क्या करे, पंखा दूरम वरम है, प्रच्छालनात् पंखा दूरम वरम, मने हाथ धोने पड़े इसलिए क्या कहना चाहिए, कीचड़ से दूर ही रहो, जो हाथ धोने की जरूरत, ये संकेत करते शास्त्र। तो अब यहां पर ये कहो तो किस लिए किया गया, आरोप होता ही इसलिए है, जो यथार्थ है उस यथार्थ को है विशेष रूप से अभिव्यक्त करने के लिए ये सारे आरोपण किए जाते। और कैसा यथार्थ, जिस यथार्थ को अभी हम जानने में समर्थ नहीं है, व्यक्त करने में समर्थ नहीं है, उसे व्यक्त करने के लिए आरोपों का सहारा लिया जाता, और आरोपों का सहारा लेकर के क्रम से अपवादित किए जाते हैं, और अपवादित करते हुए तब हम ऐसे अज्ञात जो वस्तु है उसको ज्ञापित करते। इसलिए शास्त्रों में जो अध्यारोप अपवाद आदि की जो चर्चा की, तो किसी क्या कहा, अज्ञात है ज्ञाप ज्ञापकत्वम। इसलिए जो अज्ञात पदार्थ है उस अज्ञात पदार्थ का ज्ञान करने के लिए, और अज्ञात को कहा क्या जा रहा कि वही सबका संचालन करता। लेकिन ये बात हम लोग सभी कहते हैं और कहीं तक मान भी लेते हैं, लेकिन पूरी तरह से हमारे अनुभव में ये बात दृढ़ नहीं होती। इसलिए संकेत किया कि इस बात के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें पहले आस्था रखनी होगी, और आस्था पूर्वक क्या करना होगा तो कहने लगे पहले जप करना होगा। और आस्था के लिए क्या चाहिए, आस्था रखने के लिए क्या चाहिए, जब तो चाहिए, जब तो आगे के लिए, लेकिन आस्था कब रहेगी उसी की तो यहां चर्चा की जा रही है। आस्था रखने के लिए मेधा की आवश्यकता है, जब तक हमारे में मेधा नहीं होगी तब तक आस्था नहीं होगी। इसलिए आस्था को रखने के लिए मेधा की आवश्यकता है, और फिर उस मेधा के द्वारा जब हम जिसमें आस्था रखते हैं, जिसको आस्था या रखने का प्रयत्न करते हैं, आस्था भी नहीं हो पाई, पूरी स्थिति नहीं बन पा रही, तो उसमें आस्था रखने के लिए क्या करना होता का उसी के लिए जप रूपी कार्य करना पड़ता। जप करते हैं, अब वो जप कर रहे हैं तो जप का लक्ष्य क्या है, ज्ञान दो। जप का लक्ष्य क्या है, जो कहा कि मेधा जपार्थ श्री होमार्थ, ये श्रुति कहती है। तो अब जो है संकेत किया कि वह जप जो हम कर रहे हैं आस्था के लिए क्या चाहिए, कहने लगे पहले तो मेधा चाहिए, और फिर आस्था को दृढ़ीभूत करने के लिए जप चाहिए। आस्था को दृढ़ीभूत करने के लिए जप चाहिए। तो अब समझ लो कि हमारे मेधा का और जप का लक्ष्य क्या हुआ, आस्था। हमारी मेधा का और हमारे जप का लक्ष्य क्या हुआ, कहने लगे आस्था। आस्था का मतलब उसमें ही जो सम्यक रूप से है उसमें सम्यक रूप से बैठ जाना, स्थित हो जाना, उसी में निश्चय कर लेना, इसका नाम क्या है, आस्था। तो उसमें जो है ये हो जाना, तो लक्ष्य भी हमारा वही, और जब कर्म भी जब लक्ष्य के लिए किया जाएगा तो वही है, और मेधा भी क्या होगी, तो पहले तो इतना मानना पड़ेगा कि वह परमात्मा ही क्या है, शरीर संघात को चलाने वाला है, ये सामान्य। अब जो है तब वहां पर जो कर्म किया जाएगा वो सर्वथा अपने में कर्तापने का अभिमान नहीं होगा, अभिमान नहीं होगा, फिर कर्म तो करोगे तो बगैर अभिमान के कर्म कैसे होगा, ये अंतर है। वो कर्म होगा कर्तृत्व बुद्धि से, वहां कर्म कैसे होगा, कर्तव्य बुद्धि से। अब इसके लिए एक उदाहरण बतलाया, कौशिक गोत्र में उत्पन्न होने वाले, आपने नाम सुना है पैप्पलाद ऋषि का, वह कौशिक गोत्र के अंतर्गत उत्पन्न हुए, और कौशिक गोत्र में उत्पन्न होकर के वह जो है पैप्पलाद ऋषि, जब जानते हो वेद की शाखाओं के ऋषि हैं, तो उनको भी षडंग वेद का बोध था, छह अंगों के सहित वो जो है वेद का बोध रखने वाले थे, और हृदयादि जो षडंग हैं उनका भी उन्हें जो है बोध था। अब जो है ऐसे ऋषि धर्म परायण निवृत्त परायण थे, और उनका यश भी समाज में था। ऐसे वह पैप्पलाद ऋषि संगीता संबंधी जप को कर रहे थे, क्या कर रहे थे, संगीता संबंधी जप कर रहे थे। अब जिसे षडंग वेद का ज्ञान है तो विद्वान होगा, उसे बोध होगा, षडंग हृदय का बोध है तो ऐसा बोध वाला तो इसका लक्ष्य कोई सामान्य लक्ष्य नहीं होगा। तो यशस्वी भी थे, धर्मशील भी थे, अशुभ कर्मों से तो उनका संबंध था ही नहीं। ऐसे उन्होंने संगीता में उनकी रुचि थी और उस संगीता के रुचि के अनुसार संगीता से निर्णीत जो जप का विधान, उसके अनुकूल जो है उन्होंने जप किया। और जप करते करते जब काफी काल व्यतीत हो गया, तो काफी काल व्यतीत होने के पश्चात क्या हुआ, जप तो लोग जीवन भर करते हैं, लेकिन कुछ काल जब व्यतीत हुआ तो भगवती सावित्री उनके सामने उपस्थित थी। उसने उन्हें दर्शन दिया और दर्शन देकर के कहा कि भाई तुम वर मांगो, क्या चाहते हो? तो उन्होंने क्या मांगा,